Countrywide.
नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ल और आज हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के बारे में। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार।
सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि जो एक नया ऐलान कैबिनेट की बैठक में हुआ है, उसके मायने क्या लगाए जाएं, सरकार ने 5.0 इस स्कीम की क्यों मंजूरी दी और इसका मुख्य उद्देश्य आप क्या देखते हैं?
ये जो आपने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0, इसका मतलब ये इसका पांचवा चरण है ये। और इससे पहले ये जब कोविड का जब प्रॉब्लम आया था हमें 2020 में, उसी समय इसका पहला चरण का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद ऐसे 3-4 चरण आए हैं और हर बार क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री की क्रेडिट लेने की जो क्षमता जो है उसमें एक का पहुंचता है जब भी कोई क्राइसिस आती है। और यही जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध हो रहा है उससे जो तेलों के दाम बढ़ गए, उससे हमारे बहुत सारे जो इकाइयां हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है और उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो होती है, वर्किंग कैपिटल नीड्स जो होती हैं, जरूरतें जो होती हैं, उसको पूरे करने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो ये स्कीम जो है ये करीबन जो एमएसएमई सेक्टर है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए है प्रधानतः, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक जो एंटरप्राइजेस की जो क्रेडिट की जो एक गारंटी होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्रेडिट ले रहा है तो उस क्रेडिट लेने में अगर लॉस हो जाए उस लोन में या लोन को वापस ना कर सके, उसकी जो रिस्क जो होती है उसकी गारंटी होती है। तो समय की जो असुविधा जो है कि इस समय रिस्क बढ़ जाती हैं और उससे क्या होता है कि अगर ये गारंटी नहीं मिले तो इंटरेस्ट रेट में बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट उससे कॉस्ट बढ़ जाता है उससे। तो सरकार ने ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 का जो ऐलान किया है, उससे सारे जो एमएसएमई सेक्टर के यूनिट जो है, हमारे देश में करीबन 7 करोड़ ऐसे संस्थाएं हैं जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, और वो 7 करोड़ जो इकाइयां हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो करीबन देश की जीडीपी जो है, आर्थिक जो साइज जो है, उसकी करीब 30% होती है और एमएसएमई करीबन 45% हमारे एक्सपोर्ट्स करता है। तो इसका महत्वपूर्ण बहुत चीज है और उसके लिए सरकार ने कहा कि 2.5 लाख करोड़ की जो लोन जो है उसकी गारंटी सरकार देगी। इसका मतलब अगर 2.5 लाख करोड़ की जो अगर लोन में कुछ वापस करने में कोई दिक्कतें आती है तो वो समस्या इस गारंटी से पूर्ण होगी। करीबन 18,000 करोड़ की जो लायबिलिटी है वो सरकार लेगी और 2.5 लाख करोड़ का जो लोन जो है वो लोन बैंकिंग व्यवस्था है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो उनको देंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि एक तरफ एमएसएमई सेक्टर को एक गारंटी मिलेगी उनके लोन के ऊपर, और ये गारंटी 5,000 करोड़ की ये गारंटी जो एयरलाइन सेक्टर है उनको भी दी गई है, क्योंकि इस वेस्ट एशिया के क्राइसिस में जो एविएशन सेक्टर है उसको भी काफी बहुत धक्का पहुंचा है, तो उनके लिए भी 5,000 करोड़ के लोन के ऊपर गारंटी देने की एक प्रावधान किया गया है। और बाकी बिजनेस को वो भी उनको ये प्रावधान है। एमएसएमई सेक्टर में 100% की जो लोन जो है उसको गारंटी मिलेगी, पर बाकी जो बिजनेसेस हैं उसमें सिर्फ 90% की गारंटी मिलेगी। एयरलाइन सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको अगर गारंटी दी जाएगी उनमें भी 90% की गारंटी मिलेगी। पूरी बात यह है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस से कंपनियां को कॉस्ट में दिक्कतें आ रही है, नौकरी को बरकरार रखने में दिक्कतें आ रही है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक रिलीफ मेजर है। और इससे मैं समझता हूं कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है और नौकरी को बरकरार रखने की जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। 7 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं इस देश के, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सुविधा
जी, और एक बहुत बड़ी राहत होगी खासतौर पर छोटी और मझोली उद्योग जगत के लिए। और जिस हिसाब से वेस्ट एशिया क्राइसिस भारत पर एक छोटा असर देखने को जरूर मिल रहा था कि कंपनियों की वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें आ रही थी, साथ ही साथ जो कच्चे माल के आयात की दिक्कतें होती थी वो बढ़ती जा रही थी, और इन जगहों पर जो एक निर्यात होता है वो भी उस मुकाबले नहीं हो पा रहा था। निर्यात हो रहा था जरूर, लेकिन उस मुकाबले नहीं हो रहा था। तो अब आपको क्या लगता है, एक सहारा मिलेगा और सहारा के बाद इंडस्ट्री जो है एक तरह से अपने पैरों पर दोबारा से मजबूती से खड़े होने में कामयाब हो पाएगी?
इसमें सहारा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि जैसे इस लोन की गारंटी के साथ साथ ये जो एक 7 साल की जो लोन लोन दी जाएगी, इसमें ये कवरेज होगा उसका, ये एयरलाइन के लिए है। और जो एमएसएमई कंपनियां जो हैं, 7 करोड़ कंपनियां जो हैं, उनकी जो लोन की जो अवधि होगी वो 5 साल की होगी, और 5 साल के अंदर 1 साल के मॉरेटोरियम भी रहेगा, जिसका मतलब अगर मान लीजिए वो पैसा वापस न देते हैं उसकी मॉरेटोरियम रहेगी, और एयरलाइन के लिए 2 साल की मॉरेटोरियम रहेगी। और ये व्यवस्था आज से मार्च 31, 2027 तक लागू रहेगी। इसका मतलब अगले 1 साल करीबन 11 महीने या 10 महीने तक ये व्यवस्था का उपयोग एमएसएमई कंपनियां, विमानन कंपनियां और बाकी बिजनेसेस कर सकते हैं, लेकर पूरी तरह से उनको बहुत बड़ा एक राहत जरूर मिलेगा
जी।
उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह दूं, ये राहत तो मिलेगा, पर ऐसी 2.5 लाख करोड़ की राहत से बहुत लोग इनका शंका होता है कि सरकार की जो खजाना जो है, खजाने में कितनी बहुत, पर क्रेडिट गारंटी स्कीम का जो एक बहुत बड़ी एक खूबी है ये कि 2.5 लाख करोड़ का लोन तो व्यवस्था की गई है, पर सरकार के खजाने में इसका इम्पैक्ट सिर्फ 18,000 करोड़ का ही होगा। और जिनको मॉरेटोरियम के बाद जरूरत होगा, 2 साल का मॉरेटोरियम जो विमानन कंपनी की होगी या बाकी कंपनी का 1 साल का मॉरेटोरियम है, उसके बाद अगर वो पैसा वापस दे देते हैं अच्छी बात है, और अगर गारंटी की जरूरत होगी उसके लिए इंश्योरेंस का भी व्यवस्था होता है। तो मैं समझता हूँ कितने कम रिस्क से 2.5 लाख करोड़ की जो एक वर्किंग कैपिटल की जो प्रावधान की गई है, इससे बहुत बड़ी एक राहत, नौकरी की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात जिसकी जिक्र आपने की, निर्यात का एक प्रोत्साहन दिया जा सके।
जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे भट्टाचार्य जी, कि जिस हिसाब से लगातार सरकार की कोशिश रही है कि कारोबार जगत को मुश्किलें उनकी जो है वो आसान की जाएं, तो ये मोरेटोरियम और जो क्रेडिट गारंटी का ड्यूरेशन, समय अवधि ये बढ़ाई गई है, ये स्थिरता किस हिसाब से देगी इस पूरे सेक्टर को इस कर्ज के दौरान?
देखिए, मोरेटोरियम जो होता है उससे क्या होता है कि जो कंपनी को लोन वापस देने का जो अवधि होती है उसमें जो उनकी अवधि बढ़ जाती है। जैसे कि अगर एयरलाइन कंपनी का 7 साल का लोन है, उसके अंदर 2 साल का मोरेटोरियम भी है, इसका मतलब उनको उसी समय इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बाकी कंपनियों का 5 साल का अवधि है, पर उसके अंदर 1 साल का मोरेटोरियम, उसका मतलब 1 साल तक कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि इससे जो क्रेडिट अवेलेबल होती है, पहली बात तो यह कि ऐसे समय में जब जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखती हैं कि कंपनियां जरा दिक्कत में आ गई हैं, वो लोन देने में थोड़ा झिझकते हैं, कतराते हैं, जब ये स्कीम लागू होता है तब उनको एक आश्वासन मिलता है कि ये लोन देने से भी अगर लोन वापस ना कर सके, ये गारंटी मिलेगी और गारंटी सरकार दे रही है, तो ये बहुत बड़ा एक हौसला बढ़ाता है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। और दूसरी तरफ ये कंपनियों को एनकरेज करता है कि वो छटनी ना करे, लोगों को गांव ना वापस भेज दे कि भाई काम नहीं है आप बंद कीजिए आप, उससे बड़ा एक हौसला भी बढ़ता है, इकोनॉमी का एक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार ने कुछ दिन पहले जो एक्साइज जो डीजल एंड पेट्रोल में उन्होंने घटा दिया था टैक्स, और उस घटाने से जो तेल और तेलों के दाम जो रिटेल मार्केट में जो हर देशों में जो बढ़ गए हैं, वो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर हैं, रिटेल कंज्यूमर्स जो हैं, उनके लिए अभी तक कोई एक्स्ट्रा बर्डन अभी तक नहीं आया है। हालांकि गैस में थोड़ा दाम बढ़ा है, बाकी चीजों में दाम बढ़ा है, पर पेट्रोल डीजल जो हर इंडस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें कोई दाम नहीं बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ ये एक सार्वजनिक एक अप्रोच है, जिससे कि अगर ये क्राइसिस चले या ज्यादा दिन ना चले, उसके सामने ये टेम्पोररी मेजर्स हैं, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद देखना पड़ेगा कि और क्या नीतियों की लागू करना होगा, वो देख सकते हैं।
बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो खासतौर पर 5,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि एविएशन सेक्टर के लिए अलग से रखी गई है, उसका क्या फायदा आप होते हुए देखते हैं? क्योंकि विमानन कंपनियों का लंबे समय से कहना रहा है कि ETF के बढ़ते दाम उनके लिए दिक्कत का सबब बनते जा रहे हैं, साथ ही जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसमें तमाम जगहों पर रूट्स बंद हो जाते हैं, तो उन्हें अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, तो जाहिर है उनका खर्च बढ़ता है और किराया बढ़ाने की एक सीमा होती है। तो ऐसे में ये ओवरऑल एयरलाइन सेक्टर के लिए कितना फायदे का सौदा साबित हो सकता है, और वहां की नौकरियों के लिए और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक अमृत कहें या वरदान कहें बन सकता है?
जो विमानन कंपनियां हैं जो बाहर में अपना सेवा कर रहे हैं उनके लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम नहीं देगा, जो हमारे देश में जो अपना सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा काम आएगा उनका, क्योंकि उनकी एटीएफ की प्राइस एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम तो बड़ी है और उनके जो फेयर्स थोड़े बहुत फेयर भी बढ़े हैं, पर उसके बावजूद बाकी सारे ऐसे कॉस्ट हैं उनमें भी काफी इजाफा हुआ है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि जो विमानन कंपनियां को ये नहीं कि पैसा उनको दे रहे हैं, ये सिर्फ ये कहते हैं कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी उसके ऊपर सरकार गारंटी देगी। उससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर और या बैंकिंग व्यवस्था जो है एयरलाइन कंपनियों को लोन दे सके, कंटिन्यू कर सके, क्योंकि उनको आश्वासन मिलेगा कि ये लोन वापस करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। हालांकि विमानन कंपनियों को कठिनाई तो हो रही है, पर ये एक ऐसा समय है कि ये 2 साल का मॉरेटोरियम और 7 साल का लोन के ऊपर गारंटी, मैं समझता हूं इसमें हौसला बढ़ाने का बात है, पर एयरलाइन को कठिनाई तो जरूर हो रही है, होती रहेगी जब तक ना तेलों के दाम नीचे ना आए।
आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन उद्योगों के लिए खासतौर पर ये राहत का ऐलान किया गया है उससे जुड़े तमाम सेक्टर है जो इनसे प्रभावित होते होंगे, क्या आपको लगता है उन्हें भी और एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा मिलता नजर आएगा?
देखिए ऐसा होता है कि अगर 7 करोड़ कंपनियां हैं हमारे देश में, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो एमएसएमई सेक्टर में कंपनियां हैं करीबन 99% जो कंपनियां जो हैं वो छोटी लघु उद्योग है, बहुत ही माइक्रो यूनिट्स हैं वो, और उसमें 5 से 10 लोग काम करते हैं, और यही एमएसएमई कंपनियां बड़े बड़े कंपनियों को सप्लाई करती हैं, करीबन 40% एक्सपोर्ट्स करती हैं, निर्यात करती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनमें ये गारंटी मिलेंगी, इनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स में गारंटी मिलेगी तो उनकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ी बहुत उनकी सहूलियत होगी, और उसका बेनिफिट जो जो कंपनियां उनके साथ बिजनेस कर रही हैं, रिलेशनशिप रख रही हैं, उनको भी एक सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट जरूर मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
घरेलू विमानन कंपनियों के लिए या विमानन कंपनियों के जो घरेलू ऑपरेशंस हैं उन पर फायदा पहुंचने की बात आपने कही, तो तमाम कंपनियों की एक विस्तार योजनाएं थी कि वो घरेलू स्तर पर नए रूट खोलें, तो वो एक तरह से ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, या कंपनियों का जो बढ़ता खर्चा था उससे उन्हें आशंका थी कि अब आगे वो क्या करें, तो अब आपको लगता है वो तमाम चुनौतियां काफी हद तक हल हो रही हैं?
मैं ये समझता हूँ कि विमानन कंपनियों ने अपनी जो विदेश की जो उनके सर्विसेज जो हैं उनमें रोक लगा दी गई, और जो डोमेस्टिक हमारे देश के अंदर अंतरदेशीय जो सेवाएं जो हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादा प्रसार नहीं होगा, पर जो अभी भी सर्विसेज चल रही हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये जो स्टेप्स जो है वो स्टेप उसी लिए लिया गया है, इसमें जो एग्जिस्टिंग जो सर्विसेस हैं उसमें कोई हानि नहीं पहुंची, धक्का नहीं पहुंचेगा, पर विस्तार करना या प्रसारण करना और भी इसको बढ़ाना उसमें मैं समझता हूँ कि ये चीज विमानन कंपनियां अब उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगी, क्योंकि ये समय ऐसा है जो इसको एसेस करने के लिए समय लगेगा, पर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं सर्विसेस हैं उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, ये गारंटी स्कीम का यही एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा।
और सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो ये 2 साल का एक पूरा का पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है छोटी मझोली कंपनियों के लिए, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस इतने दिनों से चल रहा है, 2 महीने के करीब का वक्त हो रहा है और उससे भी ज्यादा समय हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जितना एक असर था उस असर से निपटने के लिए मददगार होगा, या और भी आने वाले दिनों में चुनौतियां आएंगी तो उसके लिए नए कदम उठाने की भी जरूरत रहेगी?
मान लीजिए ये युद्ध विराम अभी हो जाता है या कोई पीस पैक्ट कल परसों तरसों में हो जाता है, तो उसके बाद भी कंपनियों की समस्याएं जो हैं वो करीबन 6 महीने 1 साल तक चलेगा। इसीलिए ये स्कीम को मार्च 31, 2027 तक लागू किया गया है, और इसीलिए 1 साल का मॉरेटोरियम दिया गया है कंपनियों को और विमानन कंपनियों को 2 साल का मॉरेटोरियम दिया गया है, और ये लोन 7 साल के दिया गया है विमानन कंपनियों को और कंपनियों को 5 साल का विमानन दिया है। एमएसएमई कंपनियों को अपने 20% जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर बेस करके 100 करोड़ की जो लोन जो है वो देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह विमानन कंपनियों को 1500 करोड़ तक की लोन गारंटी की व्यवस्था की गई है। तो इसका कारण यही है कि जो वेस्ट एशिया का अगर कॉन्फ्लिक्ट आज भी अगर सुधर जाए तो मैं समझता हूं कि जो जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो अभी भी चलता रहेगा, 6 महीने तक चल सकता है, 7 महीने तक चलता सकता है, उसके बाद ही अवस्था साधारण में पहुंचेगी।
बिल्कुल भट्टाचार्य जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारी दी और काफी बेहतरीन सरल तरीके से इन बातों को समझाया।
धन्यवाद
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
Countrywide.